कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
अब नानक जी को लेकर के वो सेवक यानी दास भगवानों का, और वहां पहुंचा जहां परमात्मा कपड़ा बुन रहे थे, अपने कुटिया में बैठे थे अपनी झोंपड़ी के सामने। अब उस बच्चे ने जाति प्रणाम किया और उस जब नानक साहब जी ने देखा सामने कि ये तो वही है जो सचखंड में मैंने देखा था, तब उन्होंने आंखों में आंसू भर के कहा था, भाई सूरक मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये खरासियाणा बहुता भार ये धानक रूप रहा करता, लोगों धानक रूप रहा करता। आंखों में आंसू भर गए, भगवान को सचखंड में देखा वही यहां बैठा धानक के रूप में, चरणों में गिर गए। और फिर परमात्मा ने कहा कि प्रथम मंत्र दिया, फिर कहा सतनाम आपको फिर देंगे, सतनाम बिना मोक्ष नहीं हो सकता। तो नानक साहिब जी ने सचखंड में जो देखा था भगवान वही देखा जब यहां पर, तो कहा था वाहे गुरु वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु, यानी सतनाम मिले अरियो गुरु वाह गुरु तेरी वाह गुरु, यानी धन्यवाद करते हुए कहकर वाह 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 भाई वाह बड़ा, यानी उत्तम वस्तु को और साथ में धन्यवादात्मक जो है ये एक सामूहिक शब्द है, वाह 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 गुरु वाह गुरु और सतनाम श्री वाहे गुरु सतनाम। तो सतनाम दो अक्षर का, जिसमें एक ओम अक्षर है और एक और सांकेतिक है, जिनको सतनाम प्राप्त है उन बच्चों को पता है। तो सतनाम के बिना मोक्ष नहीं, सतनाम आज इस पृथ्वी पर दास के अतिरिक्त किसी के पास नहीं। अगर कोई इसको हटकर कोई दे भी रहा हो पढ़ के हमारी पुस्तक से, वो अधिकारी नहीं। एक ड्राइविंग लाइसेंस है गाड़ी चलाने का, यदि उसको भी कोई नकली बनवा रहा हो तो वो भी बोके वो काम ना देगा, उसको सजा होगी। धोखा कितने दिन दे रखो, जिस दिन वो फंसेगा पकड़ा जाएगा उसी दिन उसकी सीधी सजा होगी। इसी प्रकार ये दो नकली संत हैं और नकली नाम दे रहे हैं और नकली गुरु बनकर शिष्य बना रहे हैं, ये डुप्लीकेट लाइसेंस बना रहे हैं, ये भी दोषी है और इनके चेले भी हानि उठाएंगे, इनको भी बहुत नुकसान होगा। तो दास का उद्देश्य यह है कि इनको सबको सतर्क करूं, सावधान हो, श्रेयाम टेलीविजन पर कहने लग रहे, पुस्तक बनाकर भेज दी, सीडी वगैरह बनाकर भेज रहे हैं भक्त, तो किस लिए? तो क्यों नहीं कोई सामने आ रहा? कोई तो कह रामपाल झूठ बोला है, और झूठ जो तो कोई कह दे झूठ बोला, सिद्ध करो एक बात को, झूठ सिद्ध कर दो, एक तो सिद्ध झूठ कर दो आप। तो पुणात्मा तुम्हारा सौभाग्य है कि आपको सहज में भगवान मिल गया, चाहे कोई दुख में ही आया है, चाहे कोई जिज्ञासु बनकर आया है, ये सब परमात्मा की रजा है। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पाथिलंदा, उस परमात्मा की दया से ही आप यहां पर उपस्थित हुए। अप्रसंग चल रहा है कि सिद्ध हो गया कि कबीर इज गॉड, ये कबीर परमात्मा है। कौन कबीर? जो काशी में धारणक रूप में 120 वर्ष रही थी। अब वो परमात्मा कहते सोचल छिद्र मैं करूं अपने दिन के काज, अपने भगत के लिए ना जाने में कितने प्रकार की लीलाएं करता हूं, कभी कोई रूप बना लेता हूं, कहीं कुछ रूप में बैठ जाता हूं, कभी किसी रूप में, यानी उनको सतमार्ग बताने के लिए ही मैं प्रयत्नशील रहता हूं। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। आप परमात्मा के हीरे मोती और लाल हो। जिनके लिए परमात्मा भटक रहे हैं वो कहते हैं कि गोता मारूं स्वर्ग में, स्वर्ग में गए वहां ब्रह्मा विष्णु महेश से मिले, ये भी उसी की आत्मा है। हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी मा देवे, सो हम मंत्र दिया शिव जी को करे हमारी सेवे। अब कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं भगवान शंकर के पास गया था, तुम्हारे भगवान शंकर के पास, उनको यो ज्ञान बताया था, सृष्टि रचना की जानकारी दी थी, वो प्रभावित हुए थे, उन्हें मुझे गुरु बनाया था, उनको मैंने सोहम नाम दिया था। पुणात्माओं, सोहम मंत्र न किसी वेद में, न किसी पुराण में और न किसी गीता में, ये परमात्मा ही अपने, क्योंकि परमात्मा का जो ज्ञान है वो कंप्लीट ज्ञान है और वो सर्वशक्तिमान है। तो परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में ल्याए, ये सोम शब्द हमने आकर प्रकट किया है और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। सार शब्द तो अभी भी किसी के सामने नहीं दिया, परमात्मा ने इस दास पर कृपा करी या कुछ महापुरुष जो उनको सीधे मिले थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुरुखदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले, इन सब को परमात्मा सीधे मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, सतलोक फिर वापस छोड़ा था और इनको ये नाम दिए थे, लेकिन इनको प्रतिज्ञा दिला दी थी कि ये सतनाम भी किसी को नहीं बताना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई और ये सार नाम कई बार ना जाए, मूल ज्ञान भी बार ना जाए। एक स्थान पर कहा कि मूल ज्ञान बार ना जाए, फिर कहा कि सतनाम और सार नाम भी कई बार नहीं जाना चाहिए। देखो, स्पेयर पार्ट की एक दुकान होती है जिसमें सारे कलपुर्जे रखे होते हैं। अब उसमें रखे तो हैं पुर्जे, लेकिन उन पुर्जों को तो जानने वाला, उन पार्ट्स को जानने वाला इंजीनियर ही गाड़ी बना सकता है या उसमें कोई डिफेक्ट गाड़ी में हो पुर्जा बदल सकता है जिसको जानकारी है। तो परमात्मा ने आके ये मंत्र सोहम बता दिया था, लेकिन इसको नाम देने का अधिकार या तो परमात्मा को था, उसके बाद सभी संतों को बना कर दिया था कि सतनाम नहीं देना। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पूरा सिख समाज इस सतनाम से अपरिचित है, जो दो अक्षर का है। तो इससे भी सिद्ध है कि नानक साहिब जी को भी सख्त मना किया गया था कि सतनाम भी नहीं देना किसी को। अब इस दास पर रजा करी है परमात्मा ने कि पूरे विश्व को सतनाम दिया जाएगा, जो शरण में आवेगा मर्यादा में रहेगा, सकल सृष्टि प्रवानिक हुई। परमात्मा ने कहा कि पूरा विश्व नाम लेगा और सतनाम का घर घर उच्चारण होगा, जाप किया करेंगे। ये इसलिए छुपा के रखा था, परमात्मा ने कहा था अपनी प्यारी आत्माओं को, सभी को समझा दिया था कि ये थी, आप इसको डिस्क्लोज कर दोगे सतनाम को, दो अक्षर के को, तो आने वाले समय में ये काल अपने दूत भेजेगा, ये जितने राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सरसार जगमाल वाली सरसा वाली, ये जितने भी, ये जितने सुधांशु जी हैं, गासाराम, ये जितने बड़े, अब ये सारे काल प्रेरित हैं, इनको ज्ञान न नहीं किसी वस्तु का, न इनको भगवान का पता, ना उनके विधि विधान का पता। तो इनके पास, और जैसे 12 कबीर पंथ चले हैं, गरीबदास जी को भी आदेश परमात्मा ने मना कर दिया था कि लिख दे पर इसको दान नहीं करना। पूरे गरीबदास पंथ में ये दो नाम का अक्षर नहीं था, केवल गरीबदास जी को एक विशेष हिदायत दी गई थी। परमात्मा संग रहते हैं पल पल में, उन्होंने हमारी एक पीढ़ी को लगातार एक ही व्यक्ति को आदेश दिया ये नाम देने का, और वो केवल अपने एक उत्तराधिकारी बनाकर जाता रहा, उसको ही देते रहे, अन्य को नहीं दिया। तो जिस कारण से यह ज्योत वहां से जला हुआ कनेक्शन जुड़ा हुआ इस दास तक पहुंचा, मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने यह मंत्र सार नाम किसी को नहीं दिया, सिर्फ मुझे कहा और मेरे को आगे दान करने का और खुल्लम खुला आदेश दे दिया कि अब तू दान करिए, तुझे फिर से कोई आदेश होगा परमात्मा का। 1997 में परमात्मा स्वयं आकर के इस दास प्रजा करी कि अब इस सारनाम भी प्रत्यक्ष करते बेशक और सतनाम भी खुल्लम खुला दे दिए, अब समय आ गया। तो पुणात्माओं, ये इतना सीक्रेट था, पूरे सिख समाज में इसकी भनक नहीं, सतनाम क्या है, हर सभी गुण गाते हैं, वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम, ना सतनाम का पता, क्योंकि अरनानक साहिब जो सतनाम का जाप करते थे दो अक्षर के मंत्र का, लेकिन आगे नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि वो पक्के भगत थे, उनको मालूम था कि बहुत बड़ी हानि हो जाएगी जब काल के दूतों का यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति मंत्र हाथ लग गया था, जिस कारण से आज दास आपको भिन्नता बता रहा है, सारा ज्ञान समझा रहा है, प्रमाण दिखा रहा है, और अन्य संत क्या मंत्र देते हैं वो भी बता रहा है, और यहां आने वाले भक्त भी बताते हैं कि वो उन्होंने ये मंत्र हमें दान किए, जो किसी भी संत या किसी ग्रंथ में प्रमाणित नहीं है, उनको कहते हैं मनमाना आचरण, शास्त्र विधि त्याग कर अपनी मर्जी से की जाने वाली साधनाएं व्यर्थ होती हैं, वो फिजूल की होती हैं, जिस कारण से उनको लाभ नहीं हो रहा था। अब जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। अब स्वामी रामानंद जी परमात्मा की प्रत्येक बात को हृदय में तो महसूस कर रहे हैं कि बोल तो सारी साची रही, तो परमेश्वर ने कहा कि आप साधना क्या करते हो, इष्ट यानी विष्णु जी की उपासना में आप क्या क्या साधना करते हो। स्वामी रामानंद जी ने बताया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय और सहसर नामा विष्णु जी का, हरे कृष्ण हरे राम राधे राधे श्याम मिला दे, और एकादशी का व्रत भी रखता हूं। परमात्मा ने कहा कि जो मंत्र आप जाप करते हो ये वेद में या गीता में प्रमाणित है कहीं पर, गीता जो है श्रीमद् भगवद गीता चारों वेदों का निष्कर्ष है, वेदों में और गीता जो वेद और गीता जो है गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ अध्यात्म ज्ञान है, और पुराण महाभारत आदि जो सुख सागर है ये किसी ऋषि और ब्रह्मा जी का ज्ञान आगे ऋषियों को प्राप्त हुआ, उन ऋषियों ने अपनी सोच अपना अनुभव उसमें मिक्स करके अलग अलग उसको 18 भागों में बांट लिया, तो ये ज्ञान गॉड गिवन नहीं है, ये ऋषियों का अपना अनुभव है, यदि ये अनुभव और ये पुराणों वाला ज्ञान वेदों और गीता से नहीं मिलता तो यूजलेस है। जो शास्त्र विधि जो भक्ति विधि ज्ञान और चीज होती है, पुराणों में जो ज्ञान है वो तो उन सत्र का है कि उसने ऐसा किया उसने ऐसा किया, उसके इतने पुत्र थे, वो ऋषि था, वो राजा था, ये इस तरह के ज्ञान है, और जहां भक्ति और के मंत्र हैं, भक्ति की साधना की विधि है तो वो किसी ऋषि विशेष की है, यदि वेदों और गीता से नहीं मिलती तो वो इनकम्प्लीट है, अधूरी है, मनमाना आचरण है। तो परमात्मा ने कहा कि गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में एक मंत्र है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण के अंदर वो ब्रह्म बोल रहा है, ब्रह्म। अब ब्रह्म कौन है, क्योंकि पुण्यात्मा आप तो एक सीधे से बालक हो, स्टूडेंट हो, और जिन टीचरों के पास आप पढ़ कर आए हो उनको कैफे का नहीं पता था, सिर पैर नहीं बता रखा भक्ति का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष जानो, जिसकी ऊपर को जड़ है वो तो परम अक्षर ब्रह्म है, परम देव पुरुष है, जो सबके आधार हैं, सबके पालन करता, क्योंकि पूरे वृक्ष को जड़ से ही मूल से आहार प्राप्त होता है, उसकी खुराक मिलती है जिससे वो प्रफुल्लित होता है। तो ऊपर को जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है और नीचे को शाखा है। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देता है सह वेदविद, तो ये 600 वर्ष पहले परमात्मा ने स्वयं ये लीला की थी एक सतगुरु की, एक तत्वदर्शी संत की। उन्होंने 600 वर्ष पहले कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार। सरपुरुष कहते हैं ज्योत निरंजन काल को, ब्रह्म को। अक्षर पुरुष कहो या अक्षर ब्रह्म कहो, सरपुरुष कहो सरब्रह्म कहो, तो अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष यानी ज्योत निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी, तीनों देवा शाखा है और फिर पात रूप संसार। अब मूल कौन है, वो जड़ कौन है? अब परमात्मा यहां ऑप्शन छोड़ गए। वैसे तो उन्होंने जगह जगह कहा कि हम ही अलखला हैं, कुतुब गोस और पीर गरीब दास खालिक धनी हमरा नाम कबीर, लेकिन यहां इस दास के लिए छोड़ दिया बताने के लिए कि जड़ कौन है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसका प्रमाण कहां है? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरुष हैं, 16 में है दो पुरुष। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में दो पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और ये दोनों नाशवान, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी आते हैं वो सारे नाशवान। जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, हो तो विषय अलग है। तो सरपुरुष कौन है, अक्षर पुरुष कौन है? सरपुरुष ये ज्योत स्वरूपी निरंजन ब्रह्म है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है। सरपुरुष की जो है केवल 21 ब्रह्मांड है, 21, और इसके बाद जो अक्षर पुरुष है, सरपुरुष के यानी ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड है, और अक्षर पुरुष जो है उसके 7 संख ब्रह्मांड है, नील पदम संख, 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है। इसको परब्रह्म भी कहते हैं। एक तो ये ज्योति निरंजन भी ब्रह्म कहलाता है, और फिर इससे नेक्स्ट ब्रह्म दूसरा ब्रह्म यानी परब्रह्म। तो ये दो तो स्पष्ट कर दिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 ने। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उद्धारते है, यह लोकतरम आविश्य विवर्ति अवेश्वर है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा पुरुषोत्तम, वो पुरुषोत्तम तो कोई और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से हटकर है, और उसी को परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। अब वो तीसरे नंबर का परमात्मा उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम कौन है, वो स्पष्ट करने के लिए थोड़ा सा और आपको पीछे से जाएंगे। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि अर्जुन यदि तूने पूर्ण परमात्मा के पाने की और भक्ति मार्ग को यथार्थ ढंग से जानना है तो तत्वदर्शी संतों के पास जा, वो तत्व ज्ञान रखते हैं। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि वो ज्ञान जो है यज्ञों की कंप्लीट यानी संपूर्ण जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की पूर्ण रूप से जानकारी परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से आकर बोलता है, वो तत्व ज्ञान है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। यहां अनुवादकर्ताओं ने गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में अनुवादकर्ताओं ने जहां इनकी बुद्धि सलप करगी फेल होगी, इन्होंने उल्टे अर्थ कर दिए। यहां ब्रह्मणे मुखे शब्द है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में, ब्रह्मणे मुखे मूल पाठ में इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ यहां कर दिया वेद की वाणी में। और गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ये ब्रह्मणे शब्द है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है, उसमें लिखा है कि ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा के पाने के लिए तीन मंत्र के जाप का निर्देश है ओम तत्सत। ये तीन पुरुष हैं, तीन भगवान हैं, तीन ब्रह्म हैं, एक सरपुरुष कहो इसके उसको सर्वब्रह्म कहो, दूसरा अक्षर पुरुष कहो इसको अक्षर ब्रह्म कहो, और तीसरा, अब तीसरे को क्लियर करने दास जा रहा है। तो यहां तीन मंत्र हैं, ओम तत् सत, ओम तो ब्रह्म का और तत् ये परब्रह्म का अक्षर पुरुष का, और सत है ये तीसरे परमात्मा का जो उत्तम पुरुषत्व अन्य उस परमात्मा का मंत्र है, ये कोड वर्ड है। तत् और सत ये सांकेतिक है, ओम सीधा डिक्लेयर है तो पहले से सार्वजनिक है। तो तीन पुरुष हैं गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में, उनके तीन मंत्र हैं, तीनों के जाप है, उससे कंप्लीट कोर्स बनता है मोक्ष का। अब गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 का सारांश है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से यहां आकर अपने मुख कमल से जो ज्ञान देता है वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो पूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, और उसके अंदर यज्ञों की यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। वो तत्व ज्ञान है जो भगवान स्वयं आकर बोलता है। वो ज्ञान अब तुझे तत्वदर्शी संतों के पास मिलेगा, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उनसे पूछ ले। तो कहता मैं भी इससे परिचित नहीं हूं। अब 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन जो मेरे इस ज्ञान को आश्रय कर लेगा, तत्वदर्शी संत खोज लेता है, उसको तत्वदर्शी संत मिल जाते हैं जो पूर्ण परमात्मा की यथार्थ भक्ति और ज्ञान जानते हैं, उसके पश्चात उनकी क्या स्थिति होती है कि जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते, जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु, ब्रह्म तत्विदु कृत्स्नम अध्यात्म कर्म चाखिलम, जो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए यानी जरा माने वृद्धावस्था का कष्ट, बुढ़ापे का दुख और मृत्यु के कष्ट से जो छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं और इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, उन्होंने इस संसार को असार जान लिया है, तो वो उस तत्परम से परिचित हैं और सारे दातम ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से परिचित हैं। वो व्यक्ति जो केवल इस संसार के संसारिक सुखों में राजपाट के चक्कर में ना पड़के केवल मोक्ष प्राप्ति, बुढ़ापे का दुख और मृत्यु के दुख से जो छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो उस परमात्मा तत्ब्रह्म से परिचित हैं। अब 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा तो किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम। अब कृष्ण जी को पुरुषोत्तम मान रहा था अर्जुन, जैसे हम श्री कृष्ण और विष्णु जी को सुप्रीम पावर मान रहे थे, इसी बुद्धि का सत्र अर्जुन का था, यही पाठ वो पढ़ रहा था। तो उस समय गीता ज्ञानदाता कहता है श्री कृष्ण में बोल रहा है ये काल भगवान ब्रह्म, ये कह रहा है 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में उत्तर दिया अर्जुन के प्रथम मंत्र का प्रश्न का कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। कौन है वो परम अक्षर ब्रह्म, जिसके जानने के बाद उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत जो उसको समझ जाते हैं वो केवल यहां के संसारिक सुखों के अतिरिक्त से हटकर केवल मोक्ष की ही कामना करते हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब हम आते हैं 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में, गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन मेरी भक्ति कर, करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, युद्ध भी कर, मेरा मंत्र है ओम नाम का बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदे हम सयाति परमा कथ, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इसकी जो आखिरी सांस तक भक्ति करता रहेगा तो मेरे वाले ओम नाम से मिलने वाली जो राहत है वो मिलेगी तुझे, इतनी गति तेरी हो जाएगी। लेकिन युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध भी कर मेरा स्मरण भी कर, 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में। अपने आत्मा जहां युद्ध करना है वह शांति का, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा तू सर्वभाव से, उसकी कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता ज्ञानदाता अपने आप बताता है 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 4 अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता। इससे सीधा कि जन्म मृत्यु श्री कृष्ण में बोल रहा है जो भगवान तुम श्री कृष्ण ही मान रहे हो स्वामी जी, तो श्री कृष्ण जी भी जन्म मृत्यु में कहता है, गीता ज्ञान दाता स्वयं कहता मेरी जन्म मृत्यु होती है। तो जब तक जन्म मृत्यु है तो शांति कहां। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनकी कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, और केवल उस परमात्मा की भक्ति करो और सब त्याग दो जिसने सब ब्रह्मंडों की रचना की है। अब गीता ज्ञानदाता तो कह रहा स्वामी जी के किसी और परमात्मा है, उसकी साधना करने से जन्म मृत्यु कभी नहीं होती, और आप स्वयं स्वीकार कर रहे हो कि मैं स्वर्ग जाऊंगा फिर पता नहीं कहां जन्म होगा, तो ये खाक साधना है। फिर क्या समझा आपने सदग्रंथों को, क्या समझा आपने श्रीमद् भगवत गीता को। अब 5 वर्ष का बालक ऐसा मुंह तोड़ जवाब दे रहा है 104 साल के ब्राह्मण को। अहंकार अभिमान इस जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन साधु संत भक्त से कहीं भी जन्मे हो, चाहे वो राजा हो या रंक, उनमें तड़फ न्यारी होती है, समय आने पर वो सब त्याग देते हैं। जिनके शुभ लक्षण होते हैं, जिनके शुभ संस्कार अधिक होते हैं। अब स्वामी जी सुन रहे हैं, अंदर कलेजा छिल रहा है, ऊपर से ब्राह्मण बने बैठे हैं अभी। अब परमात्मा आगे बता रहे हैं गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में जो 3 पुरुष बताए, सर्पुरुष अक्षर पुरुष, ये 16वें श्लोक में बता दिया। 17वें में उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से इसका लिंक है, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, यह उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, जिसकी ऊपर को जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी शाखा है। तो परमात्मा ने स्वयं आकर बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष यानी ज्योति निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। अब ये दास बता रहा है कि जो जड़ है वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 वाला वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर पुरुष कहो परम अक्षर ब्रह्म कहो। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर अब 17 पर आते हैं, उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक धर्म अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम यानी श्रेष्ठ भगवान, जिसको परमात्मा कह सकते हैं, कहा जाता है, जो वास्तव में अविनाशी है, जो सबका धारण पोषण करता है, सबके तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है जिससे सबकी परवरिश होती है, पूरे वृक्ष की परवरिश जड़ से होती है, मूल से होती है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म जो है वो जड़ है पूरे संसार की, वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में जिसके विषय में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहां गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता ने अपनी विषय बता दिया कि भक्ति भी कर युद्ध भी कर, जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी। तो गीता ज्ञानदाता के पास वो कंप्लीट कोर्स नहीं है जिससे जन्म मृत्यु उसकी कट सके और उसके उपासक की कट सके, स्पष्ट कर दिया। अब वो कहता है कि उसके लिए तत्वदर्शी संतों ने खोज ले, तो इस विश्व में आज तत्वदर्शी संत ये रामपाल दास है, जिला हिसार हरियाणा, अब किसी का भ्रम ना रहना चाहिए। देखो एक 1000 का नोट है, उस पर लिखा है कि मैं धारक को 1000 रुपये देने का वायदा करता हूं। दास पे लिखा नहीं है, दास बोल सकता है कि मैं उपासक को सर्व सुख और पूरा कंप्लीट मोक्ष देने का वायदा करता हूं जब नियम में रहोगे तो। पुण्यात्मा बिना बताए पता कैसे चले, स्वयं परमात्मा आए थे 120 वर्ष रह के चले गए, हम लाल की पहचान करना जानते नहीं, इस कारण से मार खाते रहे। और एक तो कहना होता है विद प्रूफ, प्रूफ करूंगा कि इस विश्व में किसी के पास ज्ञान नहीं, किसी के पास समाधान नहीं, और कबीर जैसा भगवान नहीं, और इस परमात्मा के दास को जो प्राप्त है कबीर परमात्मा का दिया हुआ ऐसा कोई ज्ञान नहीं। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता भी जन्म मृत्यु में, उसका उपासक भी जन्म मृत्यु में, इसलिए गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन इस 7वें अध्याय में आपको ऐसा ज्ञान बता दूंगा कि फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। इसमें क्या बताया है कि तीनों गुणों से जो हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी से, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु जी से सती थी, और तमगुण शंकर जी से संहार जो हो रहा है, इसका नियमित कारण मैं ही हूं। आप प्रसंग थोड़ा सा रह गया बीच में। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता ने अपनी साधना बता दी और अपनी परिस्थिति बता दी सारी कि मुझे प्राप्त होगा ओम नाम का जाप करेगा, युद्ध तो करना पड़ेगा। फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा है कि अर्जुन जो उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करते हैं, उस परम दिव पुरुष परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सचिदानंद घर ब्रह्म की जो भक्ति करते हैं, जो उत्तम पुरुष है, तो अन्य उसकी भक्ति जो करते हैं वो भक्ति की कमाई के बल से, भक्ति की शक्ति से, योग बल से, योग माने भक्ति साधना। योग का अर्थ ये नहीं है कि आसन पद्म लगाकर बैठ जाए आंखें बंद करके या ऊपर न पैर कर लिए अटपट, ये योग नहीं है। योग का अर्थ होता है जोड़, आत्मा का परमात्मा से मिलन करना, ये भक्ति क्रम कहलाता है। तो योग माने भक्ति भी होती है कि भक्ति योग के बल से, साधना के बल से, भक्ति की कमाई की शक्ति से उस परमात्मा के पास चला जाता है और मेरी साधना करने वाला मुझे प्राप्त होता है। अब उस परमात्मा की भक्ति का उन्होंने मंत्र बता दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में सांकेतिक, ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्विद समर्थ है, यानी सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, ओम ब्रह्म का, सर्वपुरुष का। अब फिर आइए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17, इसमें 3 पुरुष हैं, एक सर्वपुरुष, एक अक्षर पुरुष, और तीसरा जो आपको सिद्ध कर दिया 8वें अध्याय के 3रे श्लोक से, परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो। तो ओम जाप है ब्रह्म का, सर्वपुरुष का, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और जो तत् है ये है अक्षर पुरुष का, जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसको पर ब्रह्म, नेक्स्ट ब्रह्म भी कहते हैं। ये सांकेतिक है, ये इस दास के पास है, कोड वर्ड है ये, और सत भी कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। ये है परम अक्षर ब्रह्म के मंत्र जाप करने का, इसको सार शब्द भी कहते हैं, इसको सार नाम भी कहते हैं, इसको सार शब्द कहते हैं, आदि नाम कहते हैं, इसको विधे नाम भी कहते हैं। वो मंत्र हटके है, ये सत नहीं है, ये कोड वर्ड है। तो इस प्रकार वो तीसरा जो मंत्र है वो सार नाम है, उसको आदि नाम, आदि विधे नाम और सार शब्द भी कहते हैं। तो अब जो 3 मंत्र का जो जाप है उस परमात्मा के पाने का, अब ओम तो ब्रह्म का सबको पता है, गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में बोल रहा है, वो खुद कहता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण, माम माने मुझ, ब्रह्म माने ब्रह्म का, मुझ ब्रह्म का, यह एक ओम मंत्र है और कुछ नहीं, बस इति यही। और अंतिम सांस तक जो इसका जाप करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है तो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम की परम गति क्या है, ओम से क्या उपलब्धि होगी, ब्रह्म लोक में जागा, ब्रह्मलोक में। श्रीमद् देवी भागवत सातवां स्कंध 562 और 63 पृष्ठ पे स्वयं देवी जी कह रही है हिमालय राजा को, ज्ञानोपदेश कर रही है और ब्रह्म का स्वरूप बता रही है कि उस ब्रह्म का ओम नाम है, ओम नाम का जाप कर हृदय से उसको पाने का उद्देश्य रख और फिर वहां चला जाएगा, ब्रह्म लोक को प्राप्त होगा। उस ब्रह्म को प्राप्त होगा, वो ब्रह्म ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है। यानी ब्रह्म का साधक ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्म लोक में जाएगा, वो ब्रह्म की साधना करा, सर्वपुरुष की, 21 ब्रह्मांड के स्वामी की, काल की साधना कर रहा है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में उनकी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। वो ये स्पष्ट कर ही चुका है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। अपन आत्माओं जब आम वर्द होगे, आम पढ़ने लग गए, जब हमारी एज के तकरीबन शिक्षित हैं, और नहीं तो आजकल अक्षर ज्ञान वैसे भी करा दिया बुड्ढों को सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से, और आज 90% बल्कि 95% बच्चे इंटेलिजेंट हो चुके हैं। अब दास आपको ये सदग्रंथ पढ़ा रहा है, आप समझने योग्य बनाए भगवान ने पहले, और फिर ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट दिए, टीवी चैनल परमात्मा ने बनवाए, इंटरनेट बनवाया, प्रोजेक्टर बनवाए, और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मालिक ने दिया। अभी तक तो ये मीडिया वाले इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, भगवान की दी हुई वस्तु का। ये सारा दिन अटपट दिखावे, गंदी फिल्म दिखावे, झूठी साची खबर फैलावे, और जब इनकी बुद्धि ठिकाना आवेगी, जब इनको झटके देगा मालिक, तो जनता जागेगी। सुबह उठते हैं बकवास दिखावे टीवी में, सामने सो जा बकवास देखे, राम नाम का कि तो जिक्र नहीं। ये संसार बिगाड़ दिया, सभ्यता खराब कर दी इन्होंने। तो इब धीरे धीरे लोग उन पर प्रेशर देंगे, बकवास बंद करो और बढ़िया बात भगवान की चलाओ, बच्चों का भी भविष्य उज्जवल हो और हमें भी चैन की सांस आवे। एक तो राम नाम की कथा सुने, सुबह उठते हैं किसी टीवी चैनल पे और सुनते हैं तीन अन्य नकलियों की अटबट बक बक, उस सिर ना पैर उनका, ना को परमात्मा की कथा, परमात्मा की वाणी सुन ले तो हृदय में कसक होती है। ये सारा दिन अटपट करे, सैकड़ों संत सैकड़ों चैनल बना दिए, तो जब तक आत्मा को उसका असली आहार नहीं मिलेगा या उठ नहीं सकती, उभर नहीं सकती, और वो उभारने का तरीका परमात्मा की वो वाणी सूक्ष्म वेद वाणी इसको मिले, और वो उस वाणी का फिर बोलने वाला अधिकारी हो, आम व्यक्ति भी इस वाणी ने सुनाए जाए, उसका असर नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए जैसे एक राजा था, उसकी रानी धार्मिक थी, गुरु बना रखा था, उसने पता था गुरु बिन मोक्ष नहीं होता, पिछले संस्कार थे। राजा इस बात का विरोधी था कि गुरु बनाने की क्या आवश्यकता, भक्ति घर पे भी कर सकते हैं, गुरु से उपदेश लेना क्या जरूरी है। लेकिन वो अपनी पत्नी को विवश नहीं कर सकता था, कुछ धार्मिकता उसके अंदर भी शेष थी। तो उसने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि मैं आपके गुरुजी से दो बात करूंगा, मेरे प्रश्न का उत्तर देगा वो। उसकी पत्नी ने कहा कि सब सभ्यता से बात करियो, मेरे गुरुजी से आपको सब उत्तर देंगे। उसके साथ उनके आश्रम में चले गए अपनी पत्नी के साथ। अब राजा ने जाते ही प्रश्न किया कि महाराज, आप जो जनता को भ्रमित कर रहे हो कि गुरु नाम दे तभी बात बने, राम राम तो घर बैठ के भी कर ले, कोई कर ले, इसमें क्या क्या दिक्कत आती है। आप लोगों ने तो अपनी रोजी का जीविका बना रखी है दुनिया को भ्रमित करके। अपने आत्माओं, परमात्मा जगह जगह आते रहते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को समझाते रहे हैं। कहीं भी जाकर वो किसी साधु संत के रूप में कुछ दिन रहते थे, फिर चले जाते थे। वहां जो पुण्य आत्मा होती थी वो आ जाती थी, उनसे आशीर्वाद से धर्मपुन करवाकर उनको चार्ज कर जाते थे। इस समय के लिए वो भक्ति को जीवित रखना चाहते थे। तो परमात्मा यानी उस संत जी ने कहा कि राजन, एक विस्तार के साथ आपको बताना पड़ेगा। अब दो शब्दों में इसका उत्तर मैं दे नहीं सकता, और मुझे और भी बहुत भक्त बैठे इनसे मिलना है, मैं कभी आपके घर आऊंगा तब इसका उत्तर दूंगा। राजा ने सोचा, और अच्छा वहां आराम से इसका मगज चाटूंगा, वहां जगत अच्छी बात है, ठीक है जी। समय बता दिया कि उस दिन आऊंगा, तीसरे दिन, और इस समय आऊंगा। अब राजा इंतजार कर रहा था, रास्ते में पहरेदारों जो खड़े थे सैनिक अंग रक्षक उनको बोल दिया था कि साधु आएंगे, उनको आने देना, रोकना नहीं। स्वयं सिंह आसन पर विराजमान होकर बैठा था, सामने आसपास मंत्री खड़े थे, सैनिक अंग रक्षक खड़े थे राजा के। अब जो ही संत जी वहां राजा के पास पहुंचे, वहां सैनिक खड़े थे, सिपाही खड़े थे। उन सिपाहियों से संत ने कहा कि इसे अरेस्ट कर लो, इसको गिरफ्तार करो। किसको? राजा को। राजा की तरफ संकेत कर रहा था कि सैनिकों, इसे गिरफ्तार करो। एक बार कहा राजा ने सोचा वैसे मजाक कर रहे हैं, दूसरी बार सीरियसली कहा तो राजा ने सोचा ये तो भी बकवाद कर रहा है। तो राजा ने कहा कि सैनिकों इसको अरेस्ट करो। इतना ही कहा था, सैनिकों ने सिपाहियों ने उस महात्मा को चारों तरफ से जकड़ लिया। अगले आदेश की इंतजार कर रहे थे कि उसका क्या करें। तब संत जी ने कहा कि महाराज आप राजन आए अतिथि का, साधु संत का सत्कार क्या करते हैं, कैसे बेइज्जती किया करते हैं। तो राजा ने कहा कि आप बात ही कुछ ऐसी कर रहे हो जो ऐसे व्यक्ति को क्या सत्कार दिया जाए, आप क्या बकवास कर रहे हो। संत जी ने कहा मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं जो आपने परसों पूछा था मेरे आश्रम में जाके, कि गुरु जी की क्या आवश्यकता है, भक्ति तो हम खुद भी कर सकते हैं। राजा बोला ये खाक उत्तर दिया, तो आप तो मेरी गद्दी पर कब्जा करना चाहते हो कि तेरी गद्दी को तो मैं थूकू भी को नहीं, पर बात सुन ले, मैं जो बात बताना चाहता था कि जैसे आज आपके वर्ड में पावर है, आपके शब्द में शक्ति है, आप मैंने वही शब्द बोला कि इसे अरेस्ट करो, गिरफ्तार करो, ये सैनिक टस से मस नहीं हुए, और आपने वही शब्द बोले इसे गिरफ्तार करो, इन्होंने एक सेकंड की देर नहीं करी, तुरंत गति में आगे। इसी प्रकार संत की शब्द में शक्ति होती है, जो वचन वाणी सत्संग वो करेंगे उससे तुरंत असर होता है, उसको आम आदमी बकता रहो उसे कोई असर नहीं होगा। और यही कारण रहा कि आज तक इन महापुरुषों की वाणी ग्रंथ बनाकर भी लोग जाप करते रहे, इसका पाठ भी करते रहे, कबीर साहिब के कबीर सागर से मूल पाठ बनाकर संध्या सुबह दोपहर शाम करते रहे, उनसे असर नहीं हुआ, क्योंकि वो अधिकारी इसके मुख से नहीं प्राप्त था, आदेश नहीं था। तो अब इस दास को परमात्मा ने भेजा है आपके लिए अधिकारी बनाकर, और कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट कोर्स देकर, और अब आपका पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है जब शरण में आकर भक्ति करोगे। तो प्रसंग चल रहा है कि ऐसे इस दास से प्राप्त मंत्र के लेने से फिर आपको विशेष लाभ होगा, और तभी ये आपकी भक्ति और आपके रोग, आपके संकट, आपके निवारण होंगे। करेगा भगवान, कभी साब करेंगे, लेकिन नियमत आज इस दास को बना रखा है। इसके अतिरिक्त कोई और नकली अपने आप को संत महंत बनकर ये मंत्र देने लगेगा, वो इस मानव समाज का जबरदस्त शत्रु समझ लेना, अपना जीवन नाश करेगा और 10-20-100-200 और डुबो देगा। तो ऐसे व्यक्तियों से भी आपने सतर्क रहना है। अधिकारी के बिना कोई भी, सिंपल आप देख लो अपने रोज प्रतिदिन के जीवन में देख लो, अनधिकारी से कोई भी आपका सर्टिफिकेट भी अटेस्टेड है वो भी कामयाब ना करे, वो भी काम नहीं दे। और हम तो एक इतने अनमोल जीवन के साथ सौदा कर रहे हैं, और इसको ऐसे सहज में ले रखा हमने क्योंकि हम इससे परिचित नहीं है। हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं, उनका मोक्ष नहीं होता। तो इतनी सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता की भक्ति करने वाला जो ओम नाम के जाप को सर्वश्रेष्ठ मानकर आज तक ये ऋषि मह ऋषि मानते रहे, ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, ओम नाम का जाप करे तो शुद्ध आत्मा हुए। हमने ये लोक वेद सुन रखी थी, दंत कथा, और उसी पर आरूढ़ थे। अब ओम तो बहुत नमन सत्र का जाप है इस मोक्ष मार्ग में, लेकिन ये व्यर्थ नहीं है। कई नकली कबीरपंथी कहते हैं कि हम न तो ओम जाप की सलाह देते, न सोहम की देते, ये तो काल के जाप हैं। वो जाप क्या देते हैं? सतनाम सतगुरु, या पांच नाम देते हैं, अजर नाम, अमी नाम, अमर नाम, पातले सुसंधु नाम, ही हंस का काम। ये तो पूरी आरती घोट रखी है, ये कोई मंत्र है? तो पुण्यात्माओं, जब तक संत नहीं मिलेगा, सतगुरु नहीं मिलेगा, जीव कल्याण नहीं हो सकता। अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में स्पष्ट करी थी गीता ज्ञानदाता ने कि उस सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने के लिए तीन मंत्र के जाप का विधान है, उसका निर्देश है। निर्देश का अर्थ है कति डिसीजन, फाइनल डिसीजन, ये फाइनल ऑर्डर है और कोई नहीं इसके बाद। यानी जो उस पूर्ण परमात्मा के पाने का मंत्र है वो तीन मंत्र का है। और फिर उसने ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो कंप्लीट कोर्स तो तत्वदर्शी संत बतावेगा, और वो ज्ञान भगवान के द्वारा बोला हुआ होगा, वो तत्व ज्ञान होगा। तो उस कंप्लीट कोर्स में, वो कंप्लीट कोर्स परमात्मा ने स्वयं दिया था कबीर सागर में। तो कबीर सागर में इन कबीर पंथियों ने वो नाम डिस्टर्ब कर दिए कुछ, ये जान करके ये तो काल के जाप हैं, हम नहीं करेंगे। अब परमात्मा ने मालूम था काल हमारे यहां कहां गड़बड़ करेगा, तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा दोबारा वो वाणी ज्यों की त्यों कंप्लीट कोर्स उनके माध्यम से फिर बुलवा दिया। और 600 वर्ष पहले पालक ने धर्मदास जी से कहा था कि जब बर्मा पंथ चलेगा गरीबदास वाला, उसके गरीबदास जी के माध्यम से मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी, और फिर उस बर्मा पंथ जो गरीबदास जी का चल पड़ा होगा उसमें चलकर मैं स्वयं आऊंगा और पूरे विश्व का कल्याण करूंगा। तब तक इन मूल मंत्रों को छुपा के रखना। तो ये दास भेज रखे हो गरीबदास पंथ में, जब ना समझ माओ तो दास बता दे आपको। तो अब उस परमात्मा ने वो कंप्लीट कोर्स दे रखा। प्रथम आपको 7 मंत्र दिए जाते, पहले मालिक ने ये 5 नाम दिए थे आदरणीय धर्मदास जी को भी, तो कंप्लीट कोर्स दे दिया था और उसको प्रतिबंध लगा दिया था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान और ये सारे मंत्र, ये कितबार ना जाए, अपने वंशजों को भी ना बताना। धर्मदास परमात्मा ने यहां तक कह दिया था, अपने बच्चों को भी ना बताना, ना मेरा मिशन फेल हो जाएगा, मेरे बच्चे पार नहीं होंगे, काल के जाल में भयंकर यातनाएं भोगते रहेंगे। जब धर्मदास जी को चिंता बनी, एक क्योंकि वृद्ध अवस्था हो गई थी, 100 से ऊपर आयु हो गई थी, तब उसने परमात्मा से कहा कि भगवान आपने प्रतिबंध लगा दिया, जो मंत्र आपने मुझे दिए हैं इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता, और आपने मुझे 42 पीढ़ी का वरदान दे दिया कि मेरा 42 पीढ़ी तक वंश भी चलेगा, तो परमात्मा मेरे वाले वंश के बच्चे कैसे पार होंगे? मुझे ये चिंता खाए जा रही है, ना मरा जा रहा है, ना मैं जी पा रहा हूं, अब क्या करूं? परमात्मा ने देखा कि ये बात बिगाड़ेगा और वृद्ध अवस्था में दिमाग स्लिप हो जाता है, ममता घनी बढ़ाकर परिवार में। तो परमात्मा ने कहा कि धर्मदास समझ, मेरी बात को सुन, देखो अभी ये मंत्र डिस्क्लोज कर दिया तो पूरे इरकाल के दूतों का हाथ लग जाएंगे, और समय वो अभी आया नहीं है कि सारा संसार समझ सके मेरे को, और यो बात बिगड़ जाएगी, कच्चा काम ना करे तू, और सुन मेरी बात, ये 12 पंथ काल के चलेंगे, और तेरे पंथ में अगर तने नाम दे दिया सच्चा, तो छठी पीढ़ी में जो तेरी छठी पीढ़ी आओगी उसने एक काल का दूत भ्रमित करेगा, और वो ये कहेगा कि ये जाप क्या खाक जाप कर रहे हो तुम, ये देवताओं के जाप करते हो, जैसे दास ने आपको 7 नाम दिए हैं, पहले मालिक ने 5 नाम दिए थे, और वो इसको भ्रमित कर देगा, और तेरे आगे जाने वाले वंशजों के पास तो वो नाम फिर भी ना पहुंचे, लेकिन ये बिखर जाएंगे, बांडा फूट जाएगा हमारा, भेद खुल जाएगा। फिर तरुणदास फिर चिंतित हुआ, दाता फिर कैसे बात बनेगी कि बर्म पंथ में गरीबदास आएगा, उसके द्वारा मैं उसको मिलूंगा, उसको दोबारा फिर यो ज्ञान कंप्लीट बोलूंगा, उसको परिचित कराऊंगा, वो अपने मुख कमल से बोलेगा, मैं उसमें फीड कर दूंगा, डाल दूंगा, तो और फिर उसके बाद मैं आऊंगा उस पंथ में उस ज्ञान को सुलझाने और समझाने के लिए। तब तक लोग पढ़ते रहेंगे गरीबदास पंथ के, उनके समझ में नहीं आओगी अब वास्तविकता क्या है। तो तब पूरा विश्व नाम लेगा, जब 5505 वर्ष बीत जाए कलियुग के, तब यह मेरी बात सत्य होगी। तब तक ये लोग न सोचेंगे, वैसे निराधार बातें कबीर सागर में लिख रखी। तो उस समय सारा संसार नाम लेगा, पूरा विश्व पार करेगा, मेरे सब बच्चे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब मेरे बच्चे हैं, काल ने इन्हें विभाजित कर दिया, आपस में लड़ा लड़ा कर मार रहा है, मैं इन सब को फिर एक करूंगा, ऐसा ज्ञान दूंगा प्रमाणित। धर्मदास तू चिंता ना करे, जब सारा संसार पार होगा तेरे 42 वंश भी पार हो जाएंगे, तब उसको शांति हुई। फिर परमात्मा ने देखा कि ये तो बात बिगाड़ेगा, उसको प्रेरणा की, धर्मदास जी को प्रेरणा की कि भगवान मुझे अपना वो स्थान दिखाओ जहां बैठकर आपने समुद्र को रोका था, जो जगन्नाथ के मंदिर जो पुरी में बना है आपने बचाया था समुद्र से, जो 4-5-6 बार उसको तोड़ दिया था, तो वो स्थान देखना चाहूं, तो वहां ले गए भगवान उसको, वहां जाकर सब परिचित कराया कि बोल तू सतलोक जाना चाहता है, कहा जी सतलोक जाना चाहता, तो भाई तेरे नाम में दोष आ गया, तेरी ममता बच्चों में बडगीर, तूने मेरी बात का अवहेलना करने की सोच रखी थी, तूने सोच रखा था कि परमात्मा चले गए पीछे का नाम दे दूंगा, कहा जी नो की नो सोच रहा था, तो भाई मेरा दोषी होता तेरे बच्चे पार नहीं होते और मेरा काम बिगड़ जाता, अब तू दोबारा नाम ले, पुनरुपदेश दिया परमात्मा ने जगन्नाथपुरी में जाकर, वह अलग स्थान है, एक मंदिर अलग है जहां परमात्मा ने समुद्र को रोका था एक पत्थर पर बैठ के, वहां एक यादगार बना रखी है कबीर पंथियों ने, दास भी देख कर आया था उसको, वहां धर्मदास जी की समाधि बनी हुई है, वही समाधि दे दी उसको, पर सारा कंप्लीट नाम दे के अब तू स्मरण कर, अब तू निकल जाए यहां से। तो धर्मदास जी को वहां से अपने सामने चलता कर दिया, और फिर धर्मदास जी के प्रथम जो पुत्र था चूड़ामणि जी, उसको 5 नाम दिए, ये जो आपको दिए जाते हैं मतलब बीच बीच के। तो धर्मदास जी के पुत्र चूड़ामणि जिसको मुक्तामणि भी कहते हैं, और उसको आदेश दिया कि बेटा तू यही मंत्र आगे अपने शिष्यों को देना, अपने वंशजों को देना, और ये मंत्र आप देते रहना। तो छठी पीढ़ी में जाकर एक काल के दूत ने उसको भ्रमित कर दिया कि तुम बात तो करते हो सतलोक और सचखंड की और जाप करते हो देवी देवताओं की, तुम्हारा ज्ञान है ये, तो बच्चा भ्रमित हो गया, उसने वो नाम छोड़ दिए और कबीर सागर में ये सिलेक्ट कर लिए, अमी नाम अजर नाम पाताल सबसे दू नाम, ये हंस का काम फलाना काम, ये कोई मंत्र है, और चलो इसमें कौन टोकेगा गांव ने, ये तो कंप्लीट कोर्स, जब हम इस काल का रोटी खा रहे कपड़ा पहरे पानी पीवे इसमें जीवे सोवे सारा शोध इसमें कर रहे हैं, तो इसका टैक्स है हमारे ऊपर, इसकी मजदूरी करनी पड़ेगी, और हमारे ऊपर पता नहीं कितनी फाटक बंद कर रखे, रस्ते बंद कर रखे, पहली चौकी गणेश जी की, जब तक ये क्लियर आगे रास्ता नहीं देगा आगे जाएंगे काम, तो इन सबके हम ऋणी हैं, इन देवताओं के जो यहां के प्रभु हैं प्रबंधक हैं, इनसे हम बाइज्जत निकलने के लिए इनकी मजदूरी हमने करके अपना यहां भी काम चलाना है, इनका टैक्स भी भरना है, तब हमारी भक्ति सही चलेगी। तो प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है, इन देवी देवताओं की मजदूरी है, ये पूजा नहीं है।
नमस्कार सर।
सत साई बाबा जी।
क्या शुभ नाम है जी आप जी का?
मेरा नाम कालूराम दास है
सर। कहाँ से आए आप?
मैं जयपुर राजस्थान से आया हूँ।
सर क्या काम करते हैं आप?
मैं एक बैंक सेवा में सर्विस करता हूँ, बैंक कर्मचारी हूँ।
सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे?
गुरु जी की शरण माने से पहले मैं हनुमान जी का भगत था, हनुमान जी का व्रत उपवास किया करता था।
सर जो भक्ति आप हनुमान जी करते थे, व्रत उपवास करते थे, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिलता था?
लाभ का तो मालूम नहीं, लेकिन वो पुरानी रिवाज चली आ रही थी हनुमान जी भक्ति करना, लाभ ऐसा कुछ नहीं था खास।
सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए?
ये कहानी लंबी है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में मेरा पुत्र लेके आया था, पहले पुत्र आया था, उसने काफी समझाया ज्ञान घर पे, लेकिन समझ में नहीं आया, बोलता ये कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है और ये सब ये ब्रह्म विष्णु महेश ऐसे नाशवान है, तो विश्वास नहीं हुआ। करीब 6 महीने लग गए बेटे को मनाने में कि भाई ये किताब पढ़ो आप, ज्ञान गंगा भक्ति का सौदागर, ये जो है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा पढ़ी। उसको 6 महीने पढ़ने के बाद फिर समझ में आया कि वास्तव में शास्त्र के अनुकूल ये ज्ञान है, तो ये पढ़ के मैं फिर आया, पूरा परिवार आ गया।
सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला?
वो भक्ति दी उससे मेरा माइग्रेन था, सिर में दर्द रहता था, वो सिर का दर्द गायब हो गया और जो घबराहट थी शरीर में वो गायब हो गई। नाम फर्स्ट मंत्र लेने से सारा जो है ठीक हो गया। और परिवार में मेरे मदर फादर 90 प्लस थे, फादर की उम्र 95 के आसपास, मदर की 90 के आसपास, आंखों से अंधे थे और बड़ी दिक्कत थी पेशाब पानी करवाने में। तो गुरुजी के हम आ चुके थे, गुरुजी की अरदास लगाई, गुरुजी ऐसी ऐसी दिक्कत है, गुरुजी ने बोला बेटा यहाँ लेके आओ। तो हमने कहा गुरुजी ये तो आ नहीं सकते, बहुत बूढ़े आदमी हैं, दिखता नहीं इनको। बोला कैसे भी गाड़ी करके लाओ। हमने गाड़ी करी इंडिका, गाड़ी में उनको बिठाया जयपुर से, तो सुबह 4 बजे वहां से चले, तो ड्राइवर को जैसे बिठाया, गोदी में लेके बिठाया, उनको बैठा तो नहीं जाता था। ड्राइवर बोला यार कहाँ ले जा रहे हो, तो रास्ते में से वापस लाना पड़ेगा इनको। और मैं कि भाई आप नहीं समझते हो, गुरुजी के ले जा रहे हैं, पूर्ण परमात्मा आए हैं वहाँ पे और वो उनके आशीर्वाद लेने के लिए ले जा रहे हैं। तो यहाँ लेके आए, सुबह वहाँ से चले, शाम को आराम से व्हील चेयर पर आशीर्वाद ले लिया, शाम को 10 बजे वापस घर चले गए, अपने आप चलने लग गए, पेशाब पानी अपने आप करने लगे। ये बड़ा बहुत बड़ा मतलब लाभ हुआ। और मकान का काम चल रहा था मेरा ऊपर बिल्डिंग का, जीने की पड़े उसको ठेके में दे रखा था कारीगर, हमने उसको मना कर दिया था भाई जो भी तू काम कराता है तो तेरे आदमी लगा लेना, पट्टियों को उतरवा लेना। वो पैसे बचाने के चक्कर में खुद ही उतारने लग गया पट्टी, और परमात्मा की दया से क्या हुआ कि पट्टी टूट गई। पट्टी टूटी तो 2 मंजिल के ऊपर पट्टियां थी, तो वो नीचे गिर गई। नीचे गिरते ही वो तो परमात्मा की दया थी, बच गए, मतलब किसी की चोट नहीं आई। कारीगर और बेलदार दो और आदमी नीचे आ गए जीने में, और पट्टी के 3 टुकड़े हो गए। परमात्मा के शरण में थे इसलिए बच गए, ये सबसे बड़ा लाभ हुआ। और बहुत सारे लाभ हुए थे, कई लोन जो बैंक से लोन मिलता है उसकी एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा लोन मिल गया क्योंकि मकान का काम चल रहा था, परमात्मा की ऐसी दया हुई कि भक्त को पैसे की जरूरत है, तो और ज्यादा सेंक्शन हो गया। जो और स्टाफ ने पूछा मेरे से भाई ये कितना लोन मिलता है यार, इतना मिलता है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट लगाई, बोले इतना मिलता ही नहीं, और फलाना स्टाफ ने लिया है लोन, तो वहाँ उन्होंने बोली यार उन्होंने इतना लोन ले लिया, वो बोले यार ये तो कैसे हो गया, तो गलती हो गई हमसे। तो आपको क्या बताएं, लाभ बहुत लाभ मिला।
सर जैसे आप पहले हनुमान जी की भक्ति करते थे, उसके बाद आपके पुत्र ने परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया, और सर मैं जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूँ, मैंने ये तो बहुत सुना कि पिता अपने पुत्र को समझाता है, और आप बता रहे हैं कि आपके पुत्र ने आपको समझाया और आपको संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तकें दी, ज्ञान गंगा, गहरी नजर गीता में आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, और वो पुस्तकें आपने पढ़ी, फिर आपको ये लगा कि ये पूर्ण संत हैं, पूर्ण ज्ञान है, फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए और आपको बहुत लाभ मिला। आपके माता पिता जो 90 प्लस आप बता रहे हैं, वो चल फिर नहीं सकते थे, गोदी में उठा उठा के बैठाते थे, वो अपने आप चलने फिरने लगे संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से। तो सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
भक्त समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, मेरी औकात तो क्या है, लेकिन मैंने को ये ज्ञान मिला है, मैंने देखा आंखों से सुना है, मेरे को फायदा हुआ है, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ इस चीज को। तो भक्त समाज से मेरा ये निवेदन है, किसी को किसी टाइप की बीमारी हो, किसी टाइप की भी तकलीफ हो, पूर्ण परमात्मा बरवाला में आए हैं संत रामपाल जी महाराज, इनके शरण में आए, उनसे नाम उपदेश लेके अपना उद्धार करवाएं।
जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।